I am Neerav, the moderator for this conference call. Welcome to the Investor and Analyst Conference Call of Ice Make Refrigeration Limited, arranged by Ariana Matasco, emerging company reputation management and communication service provider, to discuss the financial results for Q2 FY23. As a reminder, all participant lines will be in the listen-only mode, and there will be an opportunity for you to ask questions after the presentation concludes. Should you need assistance during this conference call, please signal an operator by pressing star then zero on your touchtone phone. Please note that this conference is being recorded. I now hand the conference over to Mr. Aryan Rana from Ariana Matasco. Thank you, and over to you, Mr. Rana.
Thank you, Neerav. Good evening to all of you, and thanks for joining this conference call of Ice Make Refrigeration Limited to present and discuss the financial results for the quarter and half-year ended 30th September 2022. Ice Make, with a strong management team, vision to be a top player in its business space, is poised for a strong growth. The company over the years has been consistently improving, innovating, and expanding, adding new products, new solutions, and new clients. The company has a unique and a strong basket of 50-plus refrigeration and cooling solutions products that are manufactured in-house under five business verticals like cold room, commercial refrigeration, industrial refrigeration, transport refrigeration, and ammonia refrigeration. As a key player in the industry, Ice Make is in the forefront in catering to the cooling requirements of various industries, where it serves large number of varied clients and customers by producing innovative cooling and refrigeration solutions to industries like dairy, ice cream, food processing, horticulture, agriculture, pharmaceuticals, cold chain, logistics, hospitals, hospitality, and retail, among others. We have mailed the results to you. I hope you have received the same, and we have also uploaded this on our website and the stock exchanges. Before we proceed to the call, let me remind you that the discussion may contain forward-looking statements that may involve known or unknown risks, uncertainties, and other factors. It must be viewed in conjunction with our business risks that could cause future results, performance, or achievements from what is expressed or implied by such forward-looking statements. To discuss the results and address the queries of investors and analysts, we have with us the management represented by Mr. Chandrakant Patel, Chairman and Managing Director, Mr. Ankit Patel, CFO of the company, and other key management from the Ice Make Refrigeration. We will start the call with CMD's remarks on business and industry outlook, followed by financial highlights, and then we will open the floor for Q&A discussion. With that said, I will now hand over the call to Mr. Patel. Over to you, sir. Thank you.
Good evening, ladies and gentlemen. I, Chandrakant Patel, CMD of Ice Make Refrigeration Limited, warmly welcome you all to the earning conference call to discuss the financial results of Q2 FY23. As you may have noted, Ice Make has been able to post strong financial performance in the Q2 FY23, driven by strong recovery and aggregate demands. The pace of growth recorded in the previous quarter continued in Q2 FY23. As a result, the demand of all our products has increased significantly as compared to previous years. As you may be aware that we have announced significant expansion plan at our annual general meeting this year. The company is planning to set up a greenfield unit at a cost of around 45 to 50 crore. The company will manufacture continuous puff panels that are used in area like infrastructure, industrial, residential building. The project will be set up in Gujarat and expected to be fully functional in the next 12 to 15 months. Today, I want to tell you that we have identified the land area near Ahmedabad city and our team has started working on the machinery, equipment and technology requirement, etc. for the facility. As per the market survey, the future forecast of continuous panel business will grow at a CAGR of about 14% during next 5 years. We are confident the project will further add value and strengthen the business growth of the company. We are also focusing on geographical expansion. As we stated many times in the past, we are working on it and company of focusing on the geographical expansion of business like stock point or small manufacturing setup to save logistic cost. This will be in addition to the above capex announced. Our strategic priority of improving financial performance also include focus on increasing top line margin and ensuring a consistent growth of 25 to 30%. We have a pending order book of about 90 crore, which include few significant order like one order worth of 11 crore is of our newly developed product fridge dryer, one order of bulk milk chiller of 3.6 crore from Assam, and one cold room order of 2 crore. For our ammonia vertical, we have substantial order amount to around 35 crore from various states like Jammu Kashmir, Maharashtra, MP, etc. Industrial outlook. As per various reports on cold chain and storage business is expected to grow at CAGR of 15 to 70% and continuous panel business will grow at 14% between 2022 to 2027 forecast period. Thank you very much for sparing your time to attend this briefing from ISMEC on Q2 FY23 result. Now I hand over to Mr. Ankit Patel for financial highlight and then we will proceed for a Q&A session. Thank you.
Good evening, ladies and gentlemen. In second quarter, strong demand continued to help and deliver robust growth in revenue and profitability for the current second quarter. During the quarter, revenue from operation increased by 40% compared to the same quarter last fiscal. Consolidated revenue in current second quarter of FY23 stood at 67.12 crore as against rupees 47.90 crore in previous Q2 FY22. Led by a higher scale, cost control, profitability jumped significantly. During the quarter, EBITDA grew by 148% on year-on-year basis. EBITDA margin expanded by 486 basis points to 11.19% in Q2 FY23. As against 6.33% in Q2 FY22. During the quarter, the finance cost reduced a 57% drop on year-on-year basis to rupees 17.8 lakh. Well-managed operating and fixed costs boosted our profit. The net profit during second quarter of FY23 grew by 245% on year-on-year basis to 4.64 crore. From rupees 1.34 crore posted in previous Q2 FY22. For the half year ended September 22, the company recorded 131.97 crore revenue, led by strong recovery and demand from industry. Revenue witnessed robust 64% growth on year-on-year basis. Profitability improved significantly, led by higher sales and favorable raw material cost. In the first half, EBITDA made a threefold jump, and EBITDA margin significantly increased to 9.75% in current first half of FY23, as against 3.91% in previous first half of FY22. Net profit during the current first half of FY23 stood at 7.74 crore, as against profit of 52 lakh in corresponding period of last fiscal. We feel that second half of our current year will also be strong as usual. Thank you.
Thank you very much. We now begin the question and answer session. Anyone who wishes to ask a question may press star and one on their touchtone telephone. If you wish to remove yourself from the question queue, you may press star and two. Participants are requested to use handsets while asking a question. Ladies and gentlemen, we will wait for a moment while the question queue assembles. Participants, you may press star and one to ask a question. The first question is from the line of Zakir Nasir, individual investor. Please go ahead.
Hello. Can you hear me?
Yes, sir.
Good evening to Chandrakant Bhai and the entire IceMeg team. And my congratulations on the fantastic numbers given in the second quarter. Chandrakant Bhai, aapse ek cheez puchna tha. You have announced this expansion of 45 to 50 crores. Aur ye aap implement karenge bole between 12 to 15 months. So we can safely assume that the project will be fully functional by will be fully functional by the second or the third quarter of 24, sir. That is my question number one, sir.
Fourth quarter
of 24. That means 24 may be part iska turnover aa jayega, sir, ye project ka.
ज्यादा तो नहीं आएगा, हम लोगों ने जो फोरकास्टिंग किया है तो 25 करोड़ अप्रोक्सीमेट हम लोग 24 में कर पाएंगे.
ओके, 24 में 25 करोड़. एंड एट फुल कैपेसिटी ये प्रोजेक्ट में कितना टर्नओवर आएगा, सर?
अगर सिंगल शिफ्ट हम प्रोडक्शन करें तो 200 करोड़ टॉप लाइन हो सकता है.
So, आपको मार्च 25 में ये पूरा फुल इंप्लीमेंटेशन हो जाएगा, सर?
ऐसा तो मुश्किल है क्योंकि ये प्रोडक्ट अप्रूवल प्रोसेस और ये है, तो फर्स्ट ईयर तो लगता है कि हम 7500 करोड़ पे पहुंचेंगे. सेकंड ईयर मतलब फर्स्ट सेकंड फुल ईयर.
सो कैन वी सेफली अज्यूम दैट मार्च 24 दिस विल हैव 25, नेक्स्ट ईयर 75 एंड मे बी मार्च 26 यू विल हैव 150 ऑन इट.
130-150 के आसपास पहुंच सकते हैं.
एंड चंद्रकांत भाई, इसमें आपने तीन इंडस्ट्री का नाम लिया है कि द यूज ऑफ दिस इज इनटू इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रियल एंड रेजिडेंशियल बिल्डिंग. तो अपना जो 200 करोड़ का टर्नओवर फुल कैपेसिटी है और 26 में जो 150 करोड़ करेंगे, तो ये तीन इंडस्ट्री के बीच में आपका डिवीजन कैसा है, किधर से ज्यादा डिमांड आने का अनुमान है, सर?
एक्चुअली हम लोग रेफ्रिजरेशन इंडस्ट्री से है, तो रेफ्रिजरेशन बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अप्रोक्सीमेट 50-60% बिजनेस तो हम लोग वहीं से आएंगे. बैलेंस बिजनेस है 40% के आसपास, वो इंडस्ट्रियल बिल्डिंग ऐसा प्रपोर्शन हमें अभी दिख रहा है.
ओके, सो 50% विल बी फ्रॉम रेफ्रिजरेशन विच इज आवर कोर वर्क एंड 50% फ्रॉम बैलेंस ऑफ दी थिंग.
50-60% रेफ्रिजरेशन से होगा क्योंकि वहां एग्जिस्टिंग हमारे हम लोग एक हमारा रेफरेंस है, हमारा एक ब्रांड इमेज है, कॉन्टैक्ट्स भी है और
जी
हम लोग कई सारे जो बड़े प्रोजेक्ट करते हैं अमोनिया के साथ में उसमें अभी भी हम लोग करंट ईयर में हम लोग 20 करोड़ के आसपास ये प्रोडक्ट आउटसोर्स करके हमारे प्रोजेक्ट करेंगे तो
सिक्सटी परसेंट
बिजनेस हमें लगता है कि हम रेफ्रिजरेशन से ले आएंगे। आगे जाके इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग में हम एक थोड़ा सा रेफरेंस और मार्केट रेपो क्रिएट होने के बाद वो सेगमेंट में बिजनेस बढ़ाने का चांस दिखेगा।
फैंटास्टिक सर, फैंटास्टिक। तो अपने पास कैप्टिव मार्केट ऑलरेडी है इसका थोड़ा?
हाँ हाँ, वो तो हम लोग पिछले 4-5 साल से करते ही है, जब बड़े प्रोजेक्ट होते हैं तो ये प्रोडक्ट आउटसोर्स करके हम लोग करते हैं। इंडिया, ऑल ओवर इंडिया होता है, नॉर्थ ईस्ट में, नेपाल में, तेलंगाना, कई जगह पर हमने किया हुआ है।
वेरी गुड सर, फैंटास्टिक सर। एंड चंद्रकांत भाई, दिस मार्जिन्स ऑफ द सेकेंड क्वार्टर दैट 9.5% एबिटा, you expect H2 में भी these margins to continue sir?
अभी जिस हिसाब से मेटल के प्राइसेस है और हमारी ऑर्डर बुक भी अभी है, हमें लगता है कि ये सिमिलर अभी इस साल के लिए तो कंटिन्यू रहेगा।
जी सर, और आपका व्यू ऑन दी एक्सपोर्ट मार्केट्स सर, आई मीन हाउ डू यू एक्सपेक्ट दैट टू पैन आउट इज आइसमेक लुकिंग एट एक्सपोर्ट, विच मार्केट आर यू लुकिंग एट सर?
एक्चुअली एक्सपोर्ट में हमारे पास ज्यादा बिजनेस तो नेपाल, जो इंडिया के सराउंडिंग कंट्री है, नेपाल हमारा एक एक्सक्लूसिव एसोसिएट है, उससे काम होता है और अफ्रीकन कंट्री में कई सारा बिजनेस है, ऐसे 70% बिजनेस अफ्रीकन कंट्री में होता है। यूएस में भी हमारा एक आफ्टर कोरोना एक नया अकाउंट शुरू हुआ था जो पहले भी हम लोग काम करते थे, तो वो बिजनेस होता है वहाँ थोड़ा सा प्राइस कॉम्पिटिटिव है तो कभी बिजनेस थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है प्राइस ग्लोबली प्राइस को मैच करने में, लेकिन हम बोल सकते हैं कि हमारा फोकस अफ्रीकन कंट्री है। पिछले 3 साल से हम लोगों ने एक्सपोर्ट के लिए डेडिकेटेड एक पर्सन है जो काम करते, तो कई सारे ऐसे एसोसिएट भी डेवलप किए जो इसमें ब्रांड को रिप्रेजेंट करते हैं और हमारी प्रोडक्ट इनके पास स्टॉक में होते हैं, तो आगे जाके लगता है कि रिलेशन थोड़ा सा स्ट्रांग होगा। उसमें मिडल ईस्ट में भी है, अफ्रीका में भी है, ऐसे एसोसिएट्स है जो हमारी प्रोडक्ट उनके स्टॉक में रख के अपने अपना प्रोजेक्ट करते हैं।
फैंटास्टिक सर, थैंक्स अ लॉट सर, आई विल कम बैक। थैंक यू सर, एंड बेस्ट विशेस फॉर द कंपनी।
थैंक यू।
थैंक यू। Participants, you may press star and one to ask a question. Next question is from the line of Arvind Kothari from Nivesha Investment Advisory. Please go ahead.
Sir, congratulations on an excellent set of numbers. And I guess the growth trajectory has been good from 2 quarters, which in a way in a lean quarter we have काफी अच्छी growth दे पा रहे हैं. मैं ये समझना चाह रहा था कि ये normal है या this is something which we have experienced in these 2 quarters, which इन अ वे इनके लेवर्स क्या थे, मतलब ये अगर रन रेट में इसको अज्यूम करूं कंटिन्यू होगी तो क्या H2 में जो जनरली हम तो एक क्वार्टर देख सकते हैं जो क्वार्टरली सेल्स वी कैन रीच एट 100 crores, इज दैट अ पॉसिबिलिटी नाउ अगर वी हैव इंक्रीज्ड आवर बेस ऑफ कस्टमर्स और वर्टिकल्स दैट आर कंट्रीब्यूटिंग टू दिस?
इस साल हमें लगता है कि जैसे ये हमारा फर्स्ट और सेकंड क्वार्टर रहा है, उसी हिसाब से हमें लगता है कि आगे आने वाले कई सालों तक ऐसी डिमांड रहेंगी, तो ऐसे कोई सीजनलिटी या वैसा अभी इम्पैक्ट रहे वैसा हमें नहीं लगता है। और इस साल हमें लगता है अराउंड 275-280 crore हम इजीली मैच कर जाएंगे, हो सकता है शायद थोड़े से प्लस भी रहे, बट जितना हमें लगता है कि जो हम अचीव कर पाएंगे मे बी 275+ हमारा क्लॉक हो जाएगा इस साल।
275 मेरे को थोड़ा कंजर्वेटिव नंबर लग रहा है, बिकॉज आई गेस 130 जैसा तो हमने 2 quarters में ही कर लिया है, बैलेंस 2 quarters जो हमारी सीजन एक्चुअली स्ट्रांग रहती है, तो डोंट यू थिंक हम 80-90 crore 100 crore भी रन रेट रीच कर सकते हैं क्वार्टर, मार्च क्वार्टर स्पेसिफिकली?
कोशिश तो हमारा भी है 300 crore पहुंचने का, क्योंकि हमारे पास ऑर्डर बुक भी है 90 crore का, तो 90 करोड़ ऑर्डर बुक है अभी और हम लोग 4.5 मंथ बैलेंस है जिसमें हम बुकिंग भी करेंगे और ये 90 करोड़ ऑर्डर कंप्लीट करेंगे। कोशिश करते 300 करोड़ हो जाए लेकिन 275-280 तो मिनिमम होगा।
परफेक्ट परफेक्ट। और सर ये जो एबिटा मार्जिन जंप हम देख रहे हैं बिकॉज ये सीजनली वीक क्वार्टर में भी हम ज्यादा वॉल्यूम कर पा रहे हैं ये उस वजह से जंप है इफ द वॉल्यूम्स वी रीच एट 300 फॉर द टर्नओवर तो पहली क्या एबिटा मार्जिन रिज्यूम करने चाहिए हमको फॉर द बसिंग।
वैसे मेटल के प्राइजेस भी देखे तो अभी सेकंड क्वार्टर में उसका थोड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट आना शुरू हुआ था जो पिछले साल में मतलब जो थोड़ा एडवर्स इम्पैक्ट हो रहा था तो अभी उस हिसाब से लगता है कि इबिटा मार्जिन इस साल के लिए तो जो हमने अभी पोस्ट किया है वो फेवरेबल कंटिन्यू रहेगा तो इस साल के लिए तो हमारे प्रॉफिट अच्छे ही रहेंगे पर लेकिन गोइंग फॉरवर्ड हम प्लान करते हैं मे बी अराउंड 9-10% के आसपास का इबिटा भी हम कैरी ऑन करें लॉन्ग सस्टेनेबल तो दैट वी कैन एक्सपेक्ट।
गॉट इट सर। ऑल्सो सर देखो ये भी थोड़ा सा समझना था कि जैसे प्रिक इंडिया करके भी एक प्राइवेट कंपनी है उसका भी क्वार्टरली रिजल्ट जो था वाज गुड लगभग अपनी जैसी सेल्स की थी तो मतलब हम लोग मार्केट शेयर गेन कर रहे हैं या ओवरऑल मार्केट ही ग्रो कर रहा है इतनी तेजी से कि सारे प्लेयर्स गेन कर रहे हैं।
दोनों ही है मार्केट भी अच्छा ग्रो कर रहा है इसीलिए हम लोग ग्रो कर पाए। हमारा जो ग्रोथ है वो 100% हमने मार्केट शेयर बढ़ाया और वहीं से आया ऐसा तो नहीं बोल सकते लेकिन लिस्टेड होने के बाद हमें लगता है हमेशा कि हमें कुछ और अच्छा ग्रोथ करना चाहिए तो एक थोड़ा सा हमारे भी माइंडसेट चेंज हुआ है एक एग्रेशन है बिजनेस में वो इफेक्ट तो है तो मार्केट शेयर भी स्लोली हमारा मार्केट शेयर बढ़ा रहे हैं अभी हमारे पीयर्स के कंपेरिजन।
वंडरफुल। एंड सर ओवरऑल जो हम नई प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं विच कैन कंट्रीब्यूट गोइंग फॉरवर्ड ये प्रोडक्ट और हमारा अमोनिया डिवीजन जो अगेन नया डिवीजन है ये दोनों डिवीजन से सेल्स अपॉर्चुनिटी तो मतलब मे बी ग्रोथ ही ज्यादा है बट मार्जिन और कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब वर्किंग कैपिटल मान लो हम 200 करोड़ की सेल उस न्यू डिवीजन में करते हैं तो रफली हमारा वर्किंग कैपिटल कितना डिप्लॉयड होगा उसमें एंड रफ बेसिस इफ यू कैन गिव मी द मार्जिंस एंड उस प्रोजेक्ट के आरओई क्या छूट सकते हैं रफली रफली अगर हम कैलकुलेट करें तो।
अमोनिया में हमारा जैसे ग्रॉस मार्जिन अराउंड 10-12% के आसपास का गिन सकते हैं लेकिन जो नए प्रोजेक्ट के थ्रू जो कंटिन्यूस पैनल का है उसके मार्जिन तो मोर और लेस सिमिलर रहेंगे जो हमारे एग्जिस्टिंग बिजनेस के है वो बिजनेस बढ़ेगा तो हमारा बिजनेस सपोर्ट होगा उससे हमारे मार्जिन कॉम्प्रेस नहीं होंगे भले टॉप लाइन भी फास्ट बढ़ेगी लेकिन बॉटम लाइन को इक्वली सपोर्ट करेगा।
वंडरफुल। और वर्किंग कैपिटल कितना उस बिजनेस में चाहिए रहता है मतलब 200 क्रोर्स की सेल पे रफली व्हाट वर्किंग कैपिटल वी नीड इन दैट बिजनेस
हम शायद 1.5 महीने या उसके हिसाब से हम शायद थोड़ा सा स्टॉक रखेंगे उसके अलावा कुछ एक मैन पावर तो ज्यादा वर्किंग कैपिटल उसमें रिक्वायरमेंट नहीं होगा क्योंकि उसमें भी सेम टर्म्स है अगर डिस्पैच करें उससे पहले हम पूरा पैसा ले लेंगे तो उसी टर्म्स के हिसाब से बिजनेस होगा तो वर्किंग कैपिटल की उसमें उतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होगी पर फिर भी हमारी जो अभी एग्जिस्टिंग सीसी है उसमें हम थोड़ा सा 2 या 3-4 करोड़ हम बढ़ा भी ले तो भी एवरेज यूटिलाइजेशन अभी अराउंड 12 करोड़ के आसपास है 10-12 उससे ज्यादा हुआ नहीं है तो अभी एग्जिस्टिंग सीसी ही उसको सपोर्ट कर लेगी और हमारे इंटरनल अक्रूवल्स और कैश फ्लो भी काफी अच्छे हैं अभी इस हाफ ईयर में देखे तो अराउंड 5 करोड़ के आसपास का हमारा ऑपरेटिंग कैश फ्लो है तो अगर कुछ रिक्वायरमेंट होती है तो हम इंटरनल अक्रूवल से और कैश फ्लो से भी मैनेज कर सकते हैं तो सीसी की रिक्वायरमेंट जो है हम इन हाउस भी कर पाएंगे एडिशनल सीसी या बैंक फाइनेंस की उतनी रिक्वायरमेंट नहीं होगी।
वंडरफुल। एंड सर ओवरऑल आई वॉन्टेड टू अंडरस्टैंड कि गोइंग फॉरवर्ड जैसे अगर 5 years आउट में देखूं मे बी द ग्रोथ दैट वी आर एक्सपीरियंसिंग एंड इट्स वेरी वंडरफुल दैट वी आर कैप्चरिंग दैट नाउ मे बी 2 years गॉट लॉस्ट ड्यू टू कोविड बट अगर ट्रेंड वाइज अगर हम देखें जिस तरह से इकोनॉमी का भी एक शेप ले रहा है वी डेफिनेटली हैव अ गुड स्कोप फॉर ऑर्गेनाइज डेयरी वील हैव अ गुड स्कोप फॉर आइसक्रीम इंडस्ट्री वील हैव मे बी ऑल्सो हॉस्पिटैलिटी क्योंकि अगर आप देखें होटल इंडस्ट्री में भी केपेक्स हो रहा है, रेस्टोरेंट्स और इन सब में भी जो ऑर्गेनाइज चेन है वो काफी अच्छा कर रहे हैं, उनकी भी ग्रोथ काफी अच्छी है। ऑनलाइन डिलीवरी के वजह से जो आई मीन सेंटर्स खुल रहे हैं फॉर यू नो सेंट्रलाइज किचन एंड एवरीथिंग। तो हम इन सारे वर्टिकल्स में अपने आप को पोजिशन कैसे कर रहे हैं, जोग्राफिकली भी, टीम वाइज भी हायरिंग कैसे कर रहे हैं, बिकॉज द ऑर्गेनाइजेशन बियॉन्ड 300 crores ऑल्सो शुड आई गेस हैव डिसेंट ग्रोथ। तो उसके लिए कुछ पिक्चर इफ यू वुड शेयर एट व्हाट टाइम वी विल फर्दर अनाउंस अ केपेक्स इन आवर एग्जिस्टिंग बिजनेस ऑफ कूल रूम्स, इफ यू कैन शेयर इट कैन बी वेरी हेल्पफुल।
नेक्स्ट जो कैपेक्स की बात करें तो एक हम जियोग्राफिकली हम प्लान कर रहे हैं ईस्ट साइड नॉर्थ और ईस्ट साइड में, नॉर्थ ईस्ट साइड में जहां पे ट्रांसपोर्ट कॉस्ट लॉजिस्टिक्स हमारा एक कंसर्न है, तो ये कैपेक्स के साथ वो कैपेक्स भी एक प्लानिंग में है। दिस इज नॉट अ राइट स्टेज, हमारा थोड़ा सा डिस्कशन और वो चल रहा है, अगर वो मटेरियलाइज होगा तो हम समय पे उसका भी अनाउंसमेंट करेंगे, लेकिन उसमें उतना ज्यादा कैपेक्स लगेगा नहीं, हार्डली 2 या 2.5 या मैक्सिमम 3 crore के आसपास का कैपेक्स अगर उसमें हो सकता है। तो जियोग्राफिकली हम एक्सपांड करेंगे और हमारा फोकस दो जोन पे अभी ज्यादा है, ईस्ट साइड पे और साउथ साइड पे। वेस्ट में तो हम लोकल है, लोकली हम ग्रोथ कर ही रहे हैं, लेकिन साउथ और नॉर्थ ईस्ट साइड उस साइड पे भी हम फोकस करेंगे, जो नया जियोग्राफिकली ग्रोथ आएगा और वहां पे भी हम मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो उस हिसाब से हमारा कॉस्ट सेविंग भी होगा ट्रांसपोर्ट का। तो कुछ बेनिफिट ऐसा है कि हम कस्टमर को पास ऑन करें, हो सकता है कुछ टाइम बाद वो हमारे बॉटम लाइन में भी रिफ्लेक्ट करेगा। तो जियोग्राफिकली भी एक्सपांशन है जिससे हमारा बिजनेस स्ट्रांग होगा, जो अभी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगर मटेरियलाइज हुआ तो इन ड्यू कोर्स हम उसको अनाउंस करेंगे।
वंडरफुल सर, सो मे बी 300 crores ऑफ दिस जियोग्राफिकल एक्सपेंशन, मे बी इट विल एड 50-60-100 crores व्हाटएवर, इज दैट अ पॉसिबिलिटी?
हाँ, आने वाले समय में वो बिजनेस एग्रेसिवली जाएंगे तो हम उसमें भी इक्वल ग्रोथ एक्सपेक्ट कर सकते।
एंड 200 crores हमारा नए केपेक्स से आ जाएगा, तो रफली मे बी 500 की रन रेट में वी कैन रीच। आई नो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट, बट हमारा एस्पिरेशन 1000 crores टर्नओवर का कब तक, मतलब एज ए कंपनी भी एस्पायर टू रीच, इफ रफली वी गेट टेक अ गेस?
हमें लगता है शायद 6 या 7 साल में 1000 crore की टॉप लाइन हम जनरेट कर पाए, वैसा हमारा भी फोकस है, हिसाब से अफर हम कर रहे थे। शायद 1-2 साल आगे भी हो सकता है, डिपेंड ऑन एक्सटर्नल फैक्टर्स, बट अगर ऐसा ही सिनारियो रहा और सब कुछ प्लान के हिसाब से जाए तो अराउंड 6 से 7 साल में हम 1000 crore की टॉप लाइन जनरेट कर पाए।
वंडरफुल सर, वंडरफुल, थैंक यू सो मच सर, एंड ऑल द बेस्ट अंकित जी, ऑल द बेस्ट चंद्रकांत जी, थैंक यू सो मच।
थैंक यू, थैंक यू,
थैंक यू वेरी मच। Participants, you may press star and one to ask a question. The next question is from the line of Sridhar S, individual investor. Please go ahead.
Hello.
Go ahead.
Hello. Yeah. Good evening, sir. I had a couple of questions. So first one is, I just wanted to know for the remaining 6 months, what can be the growth percentage in revenue we can expect?
हमने अभी बोला कि 275-280 crore का हम ऑन अ कंजर्वेटिव साइड वी एक्सपेक्ट कि इतना टॉप लाइन हम इस साल हम कर पाए।
ओके, एंड द सेकंड क्वेश्चन इज रफली व्हाट विल बी द ग्रॉथ मार्जिन करंटली एंड गोइंग फॉरवर्ड डिपेंडिंग ऑन द मेटल प्राइसेस?
ऐसे ही मेटल प्राइसेस रहे तो मे बी अराउंड कंजम्पशन रेशियो अराउंड 70 मतलब 30% या 30 से भी प्लस में हमारे ग्रॉस मार्जिन रहेंगे इस साल के लिए।
ओके, ओके, एंड सो वी कैन एक्सपेक्ट, सो व्हाट इज योर एक्सपेक्टेशन ऑन द मेटल प्राइसेस? इट विल बी द सेम फॉर द नेक्स्ट 3-6 months?
अभी जो प्राइस है वही प्राइस भी रहेंगे तो हम हमारा जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है वो सेम मेंटेन कर पाए।
Okay, yeah, that's it from my side. Thank you very much and all the best and congratulations on a wonderful set of results.
Thank you.
Thank you.
Thank you. Participants, you must press star and one to ask a question. Next question is from the line of Shyam Garg, individual investor. Please go ahead.
Yes.
Hello.
Shyam Garg, may I request to unmute your line from your side and go ahead with the question, please?
Hello.
Go ahead. You can hear you now.
I have only one question. How much inventory of raw material do we keep for metals and other other products?
Around अभी जो हमारी pending order book है around 90, तो around 30 करोड़ के आसपास का अभी का हमारा raw material का stock है.
33% के आसपास हम रखते जितना हमारे पास order book है उसका.
मतलब ऐसा नहीं बोल सकते कि इतना ही रखते हैं. मतलब based on our order book और कुछ एक basic material है वो हम रखते हैं. तो around 25 से 28 करोड़ का हम मान के चलते हैं. लेकिन अभी की demand और order book जिस हिसाब से है, थोड़ा सा अभी inventory का level बढ़ा है.
सर ऐसे
part नहीं बढ़ा है, just raw material की बात कर रहा हूँ.
सर apart from metal, हमारा कोई specific raw material जो हम कहीं बाहर से लेते हो या फिर जो हम रखते हो?
ऐसे जो इंपोर्ट करते हैं बेसिकली हम कॉपर ट्यूब करते हैं. कॉपर और कुछ एक चाइना से आता है जो चेक एसेसरीज जिसको बोल सकते हैं. अदरवाइज डायरेक्ट इंपोर्ट हमारा नहीं है. और इंपोर्ट अभी देखिए तो हमारा काफी कम हुआ है क्योंकि हमारा कॉइल का जो प्लांट हमने सेटअप किया था तो 85% इंपोर्ट हमारा कॉपर है जो मलेशिया और वियतनाम से हम अभी करते हैं. हेलो.
ओके सर, थैंक यू सो मच.
थैंक यू.
पार्टिसिपेंट्स, यू मे प्रेस स्टार एंड वन टू आस्क द क्वेश्चन. लेडीज एंड जेंटलमैन, you may press star and one to ask a question. Next question is from the line of Arvind Kothari from Nivesh Investments. Please go ahead.
Hi again, sir. So, if breakup agar mile ki jo EBITDA margin jump apna hua hai, वो कितना रॉ मटेरियल प्राइस डाउनवर्ड रिवीजन से हुआ होगा, कितना परसेंटेज हमारा कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बेटर होने से हुआ होगा?
इसके अभी राइट नाउ ब्रेकअप वैसा अवेलेबल नहीं है, थोड़ा सा वर्किंग करके हम आपको बता पाएंगे. पर मोर ऑर लेस जो है वो हमने जितना भी प्राइस रिवीजन हुआ है हमारा, उसके बाद में हमने हमारे जो प्रोडक्ट की प्राइस है, प्राइस लिस्ट है, उसको रिवाइज नहीं किया है. हम थोड़ा सा अगर बाय चांस जरूरत होती है तो डिस्काउंट में हम फिगर आउट कर लेते हैं, 1-2% आगे पीछे करते हैं. तो जो हमने प्राइस लिस्ट रिवाइज नहीं किया है मेजरली तो उसके ऊपर है, पर थोड़ा सा हम वो इंटरनली वर्कआउट करके बता पाएंगे.
ओके, वंडरफुल. दूसरा सर, अपना जो ऑर्डर टेकिंग प्रोसेस है, आई मीन व्हेन वी टेक द ऑर्डर एंड मान लो मेटल प्राइसेस बीच में अगर चेंज होते हैं बहुत ज्यादा, तो उस सिचुएशन को हम कैसे मैनेज करते हैं?
एक्चुअली जो ऑर्डर बुक होते हैं उसके कैपिटल प्रोडक्ट है, तो हम जनरली कस्टमर के एडवांस के साथ ही ऑर्डर होते हैं. तो ऑर्डर के सामने जनरली हम लोग ऑर्डर करते ही है, जो भी प्रोजेक्ट बेस्ड ऑर्डर हो गया या तो हमारे जो इनहाउस मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट है, तो उतना हमारा ऑर्डर बुक भी रहता है और इन्वेंट्री भी होता है. तो जो ऑन हैंड ऑर्डर है उसमें इम्पैक्ट नहीं होता है. लेकिन एक कैपिटल प्रोडक्ट में ऐसा 6 महीने तक आप डायलॉग करोगे, बाद में ऑर्डर बनता है, निकलता है. तो इन बिटवीन प्राइस इंक्रीज होते हैं रो मटेरियल के, वो प्राइस कटा और कन्वीन्स नहीं होता है. वो इफेक्ट है जो पास्ट में भी इफेक्ट वो वैसा ही था. उस टाइम पर तो कंसिस्टेंस हर महीने कमोडिटी प्राइस बढ़ रहा था, तो फर्क वही पड़ता है. ऑन हैंड ऑर्डर जो है वो एडवांस के साथ सेम एडवांस हम सप्लायर को दे के ऑर्डर बुक करा देते हैं, तो वो इफेक्ट है नहीं अभी हमारे पास.
ओके. एंड ओवरऑल मैं थोड़ा ये भी समझना चाह रहा था कि जो हमारा प्राइसिंग मैकेनिज्म होता है, इज इट अ परसेंटेज ऑफ द कॉस्ट दैट वी विल प्राइस दिस टू आवर कस्टमर्स, या फिर हम यू नो बिकॉज हमारे मार्जिन अगर चेंज होते हैं काफी अगर कमोडिटी प्राइसेस चेंज होने की वजह से, तो इज इट बिकॉज हम कोई फिक्स्ड मार्जिन बनाना चाहते हैं पर कोल्ड रूम इज मतलब इन टर्म्स ऑफ द अमाउंट इज मान लो 50,000 और 1 lakh और वट एवर एनी वॉल्यूम बेसिस पे केजी बेसिस पे, या कैसे हम प्राइसिंग सोचते हैं कि कॉस्ट प्लस परसेंटेज वाइज मेरा जोड़ना चाह रहा हूँ या मेरे को एक कोल्ड रूम पे इतना मेरा यू कैन से इन टर्म्स ऑफ अमाउंट छूटना चाहिए, इज दैट बी अंडरस्टैंडिंग?
नहीं, हमारा परसेंटेज मार्जिन होता है, एक फैक्ट्री का अपना इंटरनल प्राइस लिस्ट होता है, कॉस्टिंग जो है फैक्ट्री कॉस्ट जिसको बोलते हैं, तो सेल्फ सिम फैक्ट्री कॉस्ट के ऊपर एक मार्जिन गाइडेंस के ऊपर काम करेगा कि फैक्ट्री कॉस्ट के ऊपर 6% मार्जिन के साथ आप ऑर्डर लेना है तो आप उनके पावर में रहेगा, फिर एक स्टेप नीचे जाएंगे तो जीएम पावर होगा, इनके ऊपर जाए तो डायरेक्टर पावर, तो हम लोग परसेंटेज मार्जिन को फोकस करते हैं, यूनिट मार्जिन होता नहीं है, लेकिन एवरी कस्टमर में मार्जिन फोकस नहीं होता है, कभी फैक्ट्री कॉस्ट में जीरो मार्जिन पे भी काम होता है, देखा जाता है कि फ्यूचर में उस कस्टमर से कोई और नए रेफरेंस क्रिएट होते हैं या कोई अच्छे कस्टमर है या हमें कोई कॉम्पिटिटर को हमें बीट करना है, ऐसे केस में स्पेसिफिक स्पेशल केस में हम लोग लोअर मार्जिन पे काम करते हैं, एवरेज तो एक मार्जिन गाइडलाइन है, वही मार्जिन पे ऑर्डर बुक होता है।
गॉट इट। तो सर है समथिंग चेंज के हमारा मार्जिन वोलेटिलिटी गोइंग फॉरवर्ड हमको लगता है कम वोलेटाइल होगा, या फिर क्योंकि पास्ट में भी जैसे कमोडिटी प्राइसेस में जब बहुत बड़े चेंजेस आए, अगर फ्यूचर में ऐसा नेक्स्ट ईयर होता है तो अगेन हमारे मार्जिन वोलेटाइल रहेंगे, या आपको लगता है कि इंडस्ट्री स्ट्रक्चर में या आपके प्राइसिंग स्ट्रक्चर में सम चेंजेस वी हैव डन बिकॉज ऑफ विच द वोलेटिलिटी वुड रिड्यूस?
देखो भैया, जो पिछले एक साल में जो कमोडिटी प्राइस जो इंक्रीज हुए वैसा तो होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हमारी कई सारी मेटल है उसमें 60% प्राइस इंक्रीज हुआ था, ये तो एबनॉर्मल सिचुएशन है, उस कंडीशन में भी हम लोगों ने हमारे मार्जिन थोड़ा सा भले ही हम लोगों ने मार्जिन कम हुआ, लेकिन हमें लग रहा था कि इतना प्राइस इंक्रीज होने के बाद तो मार्जिन ही नहीं निकल पाएगा, लेकिन कैपेसिटी यूटिलाइजेशन थोड़ा सा री इंजीनियरिंग भी किया और कई और कस्टमर सॉल्यूशन में भी हमने ऐसे कई सारे पॉकेट थे जो हम लोग प्राइस इंक्रीज को डायल्यूट करने के लिए हमने काम किया था, तो समय समय पे जब चैलेंज आते हैं तो कोई ना कोई उनके सॉल्यूशन भी होते हैं, तो आगे जाके ऐसा होगा तो ये तो ऐसा था कि इतना प्राइस इंक्रीज होगा, एक बार दो बार इंक्रीज होने के बाद लगा अब तो यहाँ स्टेबल हो जाएगा, लेकिन कंसिस्टेंट 8-9 महीने तक प्राइस इंक्रीज होता रहा, आगे ऐसा होगा तो हम लोग इमीडिएट इफेक्ट देंगे, अब पास्ट एक्सपीरियंस से ये समझ में आया कि प्राइस इंक्रीज होता है तो आप अगले कस्टमर को प्राइस पास ऑन कर दो, आपका वैलिडिटी कम कर दो, अभी हमारा जो ऑफर वैलिडिटी है वो भी एक बार नेगोशिएशन होता है तो हम लोग 1 वीक या 15 डेज ही बोलते हैं, पहले ऐसा नहीं था, हम 6 महीने 1 साल तक ऑफर को हम लोग वैलिडिटी दे देते थे, तो आगे जाके कमोडिटी ऐसा इंक्रीज होगा तो इफेक्ट थोड़ा सा कम होगा, लेकिन तो होता ही है क्योंकि ये कैपिटल प्रोडक्ट है, ये एक साइक्लिकल है, सपोज मार्जिन कॉम्प्रेस हुआ रिवर्स ट्रेंड भी आता है, तो ओवर अ पीरियड ऑफ इयर्स में वो हेलो कभी मेटल प्राइसेस बढ़ते हैं तो कभी वैसा सिचुएशन आता है जो कंपनी को भी फेवर करता है, तो ईयर ऑन ईयर देखे तो एवरेज कंपनी का मार्जिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम तो उसी मार्जिन के हिसाब से बने रहता है, तो शायद हो सकता है कि एक साल थोड़ा सा कॉम्प्रेस रहे लेकिन नेक्स्ट ईयर में साइकिल रिवर्स भी हो जाती है।
तो अभी जैसे प्राइसेस आर कमिंग डाउन, तो आप अपना प्राइसिंग पास ऑन करेंगे अपने कस्टमर को लोअर प्राइसेस, या यू वुड वांट टू मेंटेन हायर प्रॉफिटेबिलिटी टू कंजर्व द मार्जिन फॉर गोइंग फॉरवर्ड, किस तरह का स्ट्रेटेजी रहेगा अपना?
थोड़ा सा प्राइस पास ऑन होता है क्योंकि प्राइस लिस्ट रिवाइज नहीं करते हम लोग, नेगोशिएशन में वो कॉम्पोनेंट यूज कर लेते हैं, केस टू केस कस्टमर कैसा है, कब से वो डायलॉग शुरू हुआ है उसके ऊपर, और थोड़ा बहुत मार्जिन में भी मिल जाता है, थोड़ा मार्जिन होगा, थोड़ा कस्टम आपको पास ऑन हो जाएगा।
ओके सर, जो एक सोलर कोल्ड रूम की एक जो अपॉर्चुनिटी इमर्ज होती आ रही है, हाउ आर वी अप्रोचिंग दैट डिवीजन एंड ट्रांसपोर्ट रेफ्रिजरेशन, इन दोनों डिवीजन के बारे में अगर आप अपने प्लान बताएंगे और कैसी ग्रोथ एक्सपीरियंस कर रहे हैं कस्टमर्स पे, किस तरह से इंक्वायरी भेज रहे हैं?
एक्चुअली सोलर कोल्ड रूम जो है वो 100% कस्टमर गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट भी है, तो वहाँ टेंडर भी काम होता है। अभी वो सेगमेंट जैसा डेयरी और सेगमेंट की तरह इतना एस्टेब्लिश नहीं हुआ है, क्योंकि कई स्टेट ये प्रोडक्ट की इम्पोर्टेंस समझते नहीं है, तो जो स्केल होना चाहिए, जो नंबर होना चाहिए डिमांड में, वो है नहीं। और हम लोगों ने सोलर कोल्ड रूम हमारी इनहाउस जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसी से प्रोड्यूस किया हुआ प्रोडक्ट था, तो हमारे लिए वो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन हम लोग कोई और जगह पर यूज करेंगे। तो इतना ज्यादा फोकस करने के बावजूद भी सोलर कोल्ड रूम में हम नंबर्स नहीं बना पाएंगे, क्योंकि हमारे पीयर्स भी जो हमारे से पुराने हैं उनको भी हमने देखा कि 5-6 साल बाद वो जो नंबर्स कर पाए, तो लगा कि हमें उसके ऊपर इतना फोकस और डिपेंडेंसी नहीं रखना चाहिए। और ट्रांसपोर्ट रेफ्रिजरेशन में हम लोग जो है वो 35-40% ग्रोथ हमें दिख रहा है, हमारा कैपेसिटी जो है उसका प्रोडक्शन कैपेसिटी भी अभी जो है हमारा टर्नओवर उनके सामने 2-3 times कैपेसिटी है, तो वहाँ काफी स्कोप है। उसके अंदर भी हमने इंडिया में जनरली आप भी जानते हैं कि कोच बिल्डिंग के लिए चेसिस अहमदाबाद ऑफिस फैक्ट्री लाना मुश्किल है, तो हर रीजन वाइज हम लोगों ने टाई अप किया हुआ है, जो हमारे से डिसमेंटलिंग कंडीशन में प्रोडक्ट परचेज करके ज्वाइंट ब्रांड में कस्टमर्स को सॉल्यूशन देते, तो ये सब ज्वाइंट वेंचर है। जितनी भी बड़ी चेसिस मैन्युफैक्चरर कंपनी है वो सबको हमने अप्रोच किया है, आप आइसर ले लो, लेलैंड से भी किया हुआ है, महिंद्रा से भी है, कई सारी कंपनी से हम लोगों ने डायलॉग किया हुआ है। अगर रिफर व्हीकल में चेसिस मैन्युफैक्चरर करता है तो जीएसटी का भी अच्छा बेनिफिट है, आज नहीं तो कल नंबर्स बढ़ने के टाइम पे चेसिस मैन्युफैक्चरर ये प्रोडक्ट अपने अम्ब्रेला में लेके काम करेगा, तो लगता है कि वहां भी स्केल बढ़ सकता है। अभी भी हमारे नंबर्स तो अच्छे हैं, लेकिन ऐसा है कि हम लोग जो ग्रोथ चाहते हैं वो 100% ग्रोथ वो प्रोडक्ट से आ जाएगा, ऐसा इतना भी ज्यादा नहीं।
Got it. And sir, government इसमें कुछ they are focusing or they are giving some benefits to the people who are building up the facility for transport refrigeration?
Government तो काफी incentive है, 35-40% है, कोई particular segment है जो आप horticultural product है जैसे fruit, vegetable वो segment के लिए, अभी लॉजिस्टिक के लिए भी गवर्नमेंट ने अपना अच्छा सा पॉलिसी दिया था, इंसेंटिव पॉलिसी था, उसमें स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट की सब्सिडी मिला है, तो 50-60% बेनिफिट लॉजिस्टिक में आप कोल्ड वेयरहाउस करके आप कमर्शियल बेस पे उसका यूज करते हैं, तो गवर्नमेंट के बेनिफिट इंसेंटिव प्रमोशन स्कीम काफी है, तो उनका बेनिफिट कई सारी इंडस्ट्रीज उसके लिए प्लानिंग करती है।
ओके, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच।
द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द लाइन ऑफ जाकिर नासिर, इंडिविजुअल इन्वेस्टर, प्लीज गो अहेड।
चंद्रकांत भाई, योर अभी जो अपना टर्नओवर है ये साल जो भी 275 से 300 करोड़ तक जो भी होगा, ये इसका ज्योग्राफिकल डिवीजन क्या है सर? और अगर इसका आपका थोड़ा लॉपसाइटेड ज्योग्राफिकल स्प्रेड है तो कितने साल में आप कितने साल में थोड़ा इसको एक दूसरे ज्योग्राफी से लेवल करेंगे सर?
जियोग्राफिकल परसेंटेज हम आपको बताए क्या H1 का, तो ईस्ट साइड में हम लोग 12% समथिंग है और वेस्ट में 60% है, जो पहले 68% 65% रहा करता था 2 साल पहले, जो अब 60% है, नॉर्थ साइड में 9% के आसपास है और साउथ में 12% है। और ऐसा है कि वेट
बहुत स्कोप बहुत है सर जी, जितना वेस्ट का कंजम्पशन है उतना आई थिंक साउथ में इज इक्वली हाई द कंजम्पशन ऑफ दीज थिंग्स। सो आई मीन इफ यू हैव अ फैसिलिटी इन द साउथ आई मीन यू कैन हैव अ वेरी फास्ट ग्रोथ सर। सो व्हाट इज योर थॉट्स ऑन दैट सर?
सही बात है आपकी, साउथ में हम लोग ईयर टू ईयर पिछले 4 साल में हमने हमारे इतने एग्रेसिव टॉप लाइन ग्रोथ करने के साथ भी हम लोगों ने 12% साउथ से हमारा टॉप लाइन में कंट्रीब्यूशन है। और साउथ में हमारा जो भारत रेफ्रिजरेशन चेन्नई फैसिलिटी है, आप भी जानते हैं कि वो सिटी के अंदर फैसिलिटी है, तो हम लोग देखते हैं कि वहां पर उनकी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए हम एक नया बड़ा स्पेस लेके वहां पर अभी लिमिटेड प्रोडक्ट हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो हम भारत रेफ्रिजरेशन 5-6 साल चलाने के बाद अब हमें भी वो यूनिट को ऑपरेट करना हमारे लिए आसान हो गया, हमारी टीम भी वहां डेवलप हो गई। तो अगले 1-2 साल में जैसा अंकित भाई ने बोला कि जियोग्राफिकल एक्सपांशन, जो हमारा एग्जिस्टिंग यूनिट है उसकी कैपेसिटी भी हम बंद करेंगे और ईस्ट में भी हम नया बिजनेस के लिए 1-2 लोगों से बात होती है, तो वो अपॉर्चुनिटी भी अगर मटेरियलाइज हो गया तो वहां हमें भी पता है कि वेस्ट में हम जहां पर है वो पीक पे है, अब यहां बढ़ना मुश्किल है, हमें और रीजन में जाके ही काम करना होगा। लॉजिस्टिक कॉस्ट की लिमिटेशन को लेके हमें लोगों को उनके डोर स्टेप पे सॉल्यूशन देना है जिससे ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कम हो जाए और हम कॉम्पीट कर पाए, तो ये दोनों में काम करते हैं हम। कंटिन्यूस पैनल वाला जो एक्सपांशन प्रोजेक्ट है उसके साथ साथ ये दोनों रीजन में हमारी सेल और हमारा मार्केट शेयर बढ़ाने के लिए हम लोग एग्रेसिवली काम करते हैं।
जी फैंटास्टिक सर। और चंद्रकांत भाई, अभी जो आज की तारीख में जो अपने देश में कंजम्पशन है कंटिन्यूस पैनल का, ये क्या इंपोर्ट होता है सर करेंटली, और इंपोर्ट प्राइस आई मीन कंपैरिजन कैसा है अपने प्रोडक्शन कॉस्ट से और जो इंपोर्ट अगर होता है ये मटेरियल तो सर?
एक्चुअली इंपोर्ट तो नहीं है, 100% इंडिजिनियस प्रोडक्ट है। इंडिया में हम लोग जो प्रोजेक्ट लगा रहे वैसे 12-13 प्रोजेक्ट है जो मैन्युफैक्चरिंग होती है, तो प्रोडक्ट 100% इंडिया में ही बनता है। इंपोर्टेड शायद कॉम्पीट नहीं कर पाएगा क्योंकि प्रोडक्ट थोड़ी सी वॉल्यूमेट्रिक है, तो लॉजिस्टिक शिपिंग कॉस्ट को लेके इंडियन इंडस्ट्रीज के लिए ही ये मार्केट रहेगा। हालांकि हम थोड़ा एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं हमारे सराउंडिंग कंट्री में, हमारे लिए एक और बेनिफिट है कि हम मानो अफ्रीका या नॉर्थ मिडल ईस्ट में जाके कोई काम करना चाहे तो हम ट्रंकी सॉल्यूशन के पार्ट में थोड़ा एक्सपोर्ट भी कर पाए।
तो कितने और प्रोड्यूसर सर ये टाइप ऑफ मटेरियल के सर?
आप बोलना चाहते हैं
कितना बड़ा है सर इसका मार्केट, कितना बड़ा है
मार्केट? सर्वे जो किया हुआ है हमारे पास रिसर्च रिपोर्ट है, लेकिन रिसर्च रिपोर्ट में हमें भी कॉन्फिडेंस नहीं है जो फिगर दे रहे कि ये मार्केट उन लोगों ने कौन सा दे लिया, लेकिन 3,000 करोड़ के आसपास का मार्केट बोल सकते हैं हम लोग, जो हमारे अभी एग्जिस्टिंग इंडिया में जो काम करते हैं वो लोगों का टॉप लाइन को देखे तो।
एंड एटलीस्ट 3-4 मोर प्रोड्यूसर्स आर देयर फॉर दिस काइंड ऑफ मटेरियल सर?
वैसे बड़े कॉम्पिटिटर्स में हम देखे तो जिंदाल मैटेक करके है, लॉयड इंसुलेशन है, बनल प्रीफैब है, मैटेक्नो और रैनेक है, तो इनको हम एस्टैब्लिश प्लेयर इसमें बोल सकते हैं कंटिन्यूस पैनल में।
जी सर, जी सर, थैंक यू सर,
थैंक यू।
Next question is from the line of Sahil Chopra from KIFS Street Capital. Please go ahead.
Hello, sir. Sir, हमारा Q2 में capacity utilization कैसा था?
Around 70% capacity utilization infrastructure का बोल सकते हैं।
70% ना? तो top line हम कितनी कर सकते हैं at optimum capacity utilization?
400 से लेके अराउंड 450 करोड़ तक का हम उसमें टॉप लाइन बता सकते हैं। उसमें जो जैसे अमोनिया रेफ्रिजरेशन का वर्टिकल है जिसमें एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का ज्यादा यूज नहीं होता है, तो उनको मिलाए तो हमारा 400 से 450 करोड़ का टॉप लाइन हम एग्जिस्टिंग फैसिलिटी में बना सकते हैं।
तो नॉर्मली हम कह रहे हैं कि जैसे हमारा 50 करोड़ का ग्रॉस ब्लॉक है तो 9x हम उस पर टॉप लाइन कर सकते हैं, राइट?
यस।
ओके ओके, ठीक है, ठीक, थैंक यू।
थैंक यू। A reminder to all the participants, you may press star and one to ask a question. The next question is from the line of Kunjan Kabra from Nivesha Investments. Please go ahead. Kunjan, may I request to unmute your line from your side and go with the question, please?
Okay. So, congratulations for the very good set of numbers. So, I have a question that जैसे अगर अपन देखें तो अपने को रीजनल रीजनल बेनिफिट ज्यादा लेना पड़ता है, बिकॉज अपन को ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट अपना एक रीजनल मार्केट एस्टैब्लिश हो जाता है। तो हाँ, मतलब इज इट दैट कि अपन का ग्रोथ बिकॉज यू नो द बिगर कंपनीज और छोटा कंपनी यहाँ पे ज्यादा एक्सपेंशन कर रहे हैं, या एंड लाइकवाइज जैसे फ्रिक इंडिया ने भी काफी अच्छे नंबर्स रिपोर्ट किए थे, तो इज इट कि यहाँ वेस्ट रीजन में काफी ज्यादा एक्सपेंशन या ये सब हो रहा है, या इट इज ओवरऑल सब जगह ही ऐसा हो रहा है कि अपना ग्रोथ आ सकता है?
ये ओवरऑल सब जगह पर ग्रोथ है। हम लोग नॉर्थ ईस्ट में हम लोगों ने अभी जो काम करते हैं वहां पर, शायद हमारा आसाम स्टेट में पिछले सालों में जो सेल्स है उसमें 2x-3x सेल्स हो गया, तो ऑल ओवर इंडिया ग्रोथ है। वेस्ट हमेशा से ज्यादा है, तो वेस्ट में डेयरी भी स्ट्रांग है, आइसक्रीम स्ट्रांग है, इसलिए बड़े प्रोजेक्ट आ जाते हैं। साथ में देखे तो अभी हम लोग सालों से शायद जम्मू कश्मीर में हमारा सेल ना के बराबर था, अभी हमारे पास जम्मू कश्मीर के ऑन हैंड ऑर्डर 8 करोड़ के हैं। एक डेयरी के लिए हमने एक टेंडर डाला हुआ है, एक और 35 करोड़ के एक और ऑर्डर गवर्नमेंट टेंडर हमने किए हुए, तो ऑल ओवर इंडिया यूनिफॉर्म ग्रोथ हो रहा है। वेस्ट का साइज ही बड़ा था, मार्केट बड़ा था, तो वेस्ट उनके कंपेरिजन में वेस्ट भी ग्रोथ हो रहा है। लेकिन हम लोग ऑल ओवर इंडिया काम करते हैं, वेस्ट तो ऐसा है कि हम लोग लोकलाइज है इसलिए लोग हमें प्रीफर करेंगे, तो हम और रीजन में जाके हम ज्यादा एग्रेसिव काम करते हैं जिससे हम लोग यूनिफॉर्म मार्केट शेयर हो पाए। हमारे नेक्स्ट एक्सपांशन के लिए हम लोग एक रेडीमेड एक कंफर्म बिजनेस हम बनाने के लिए प्लान कर रहे हैं जिससे हमें मैन्युफैक्चरिंग सेटअप करने के टाइम पे हमारे पास कंफर्म ऑर्डर रहे।
अच्छा, तो फर्दर ऑर्डर नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया में भी अपन अग्रेसिवली प्लान कर रहे हैं अभी रेवेन्यू, मतलब फर्दर ऑर्डर?
हाँ करते, नॉर्थ ईस्ट तो हम लोग काफी फोकस करते हैं। नॉर्थ ईस्ट में कंपेरेटिवली कंपटीशन भी कम है, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट के बावजूद भी वहाँ लोग अच्छे प्राइस पे काम करते हैं। इतना कंपटीशन जितना वेस्ट और साउथ नॉर्थ में उतना वहाँ कंपटीशन नहीं है, हालांकि पहले मार्केट छोटा था, अब तो वहाँ भी मार्केट बड़े होते हैं। हम लोग नॉर्थ ईस्ट सिक्किम स्टेट में हम दो प्रोजेक्ट करते हैं अमोनिया के, वो हमारा एक सालों पुराना अकाउंट है। तो नॉर्थ ईस्ट के 7 सिस्टर स्टेट में, त्रिपुरा देखो आप, नागालैंड, ये हर स्टेट में हमारा रेगुलर सप्लाई होता है। अब तो कई सारी अमूल जैसे आइसक्रीम ब्रांड ने भी वहाँ हर सिटी में, हर डिस्ट्रिक्ट या स्टेट कैपिटल में अपना स्टोरेज वेयरहाउस है, तो ये सब काम हम लोग करते हैं। नॉर्थ ईस्ट हमें लगता है कि आगे जाके और अच्छा काम करेगा।
अच्छा अच्छा, ठीक है सर, बाकी क्वेश्चन अभी आंसर्ड, सो थैंक यू सो मच एंड गुड लक टू द मैनेजमेंट एंड टू यू टू।
थैंक यू।
थैंक यू। अ रिमाइंडर टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स, यू मे प्रेस स्टार एंड वन टू आस्क अ क्वेश्चन। As there are no further questions, I now hand the conference over to Mr. Mandar Desai for closing comments.
Before we close the session,
let me just make a couple of summary points from the management discussion. We are at a cusp of strong growth and the way forward taken by the management to fulfill our vision of becoming a top player in our business space will help the company to create consistent growth and value for all our stakeholders. In the words of Thomas J. Watson, and I quote, "To be successful, you need to have your heart in your business and business in your heart." This is what IceMag has done in the last 30 plus years to become a successful pooling partner to a large number of companies in varied industry segments, and the company is fully geared to take advantage of the efforts of the past and future opportunities to create our own unique legacy. Last but not the least, on behalf of IceMag Board of Directors and Management, we would like to thank each one of you for your participation in this investor and analyst conference call. Thank you for your listening and have a blessed time ahead. Thank you.
Thank you very much. On behalf of IceMag Refrigeration Limited, that concludes this conference. Thank you for joining us. You may now disconnect your lines.